اور اس قیامت کے دن کی جو خصوصیات ہیں بہت عجیب و غریب ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کل لوگوں کے کل قیامت کے دن لوگوں کے بھید کھولے جائیں گے, ہر آدمی کا بھید کھول دیا جائے گا. اور اسی وجہ سے ایک تو بھید کھولے جائیں گے, دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ شکل صورت اختیار کر کے ان کے ساتھ لپیٹے ہوئے ہوں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوں گا کہ ہر آدمی ایسی صورتحال میں گرفتار ہوں گا کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. ایسی صورت ہو سکتی ہے, میرے ساتھ یہ چیزیں لگ سکتی ہیں, میں ایسا ہوں گا, میں نے یہ کیا, اس کا یہ رزلٹ ہوتا, مجھے اندازہ نہیں تھا. جیسے اس سے پہلے بھی بات آئی نا کہ یہ بیج کی شکل میں ہم جو عمل انجام دیتے ہیں وہ بیج ہیں. اب کس بیج سے کس طرح کا درخت نکلتا ہے ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کیسے کیسے بیج ہوتے ہیں اور کیسے کیسے عجیب و غریب درخت اور بیلیں ان سے نکلتی ہیں. ہمارے اعمال جو ہیں نا وہ بیج ہیں اور ان سے نکلنے والے ہیں درخت, یعنی نتیجہ ان کے درختوں کی شکل میں, درختوں کی شکل میں نہیں, اس ٹائپ کے نتیجہ اس کا اس کے اعتبار سے ہوگا. لیکن وہ نتیجہ جس اعتبار سے ہوگا وہ اتنا بھیانک ہوگا کہ لوگوں کو گمان بھی نہیں ہوگا اس کا. اس لیے جو لوگ جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں وہ برائیاں ان کو لگی ہوئی ہوں گی. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. ان لوگوں کے سامنے وہ بات آ جائے گی جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا, اور ان کے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی, وہ برائیاں جن کو انہوں نے کیے تھے جو کمائے تھے انہوں نے, اور ان کو وہ چیزیں بھی گھیر لیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے. دنیا میں دین کی بہت سی باتوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, جس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں وہ چیز ان کو کل قیامت میں گھیر لے گی. بعض مرتبہ بعض چیزوں کو ہلکی سمجھتے ہیں, غیر مسلم تو خیر سمجھتے ہی ہیں لیکن مسلمان بھی مسلمانوں کے بعض کاموں کو اسلام کے بعض کاموں کو مذاق معمولی سمجھ کے مذاق اڑاتے ہیں. اس کو کہا جا رہا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ جب اس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ ہمیں پکارتا ہے, درد ہو گیا, بیماری ہو گئی, پریشانی آ گئی, کام اٹک گیا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتا ہے. اور جب اس کو نعمت ہم دے دیتے ہیں, اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں, تو کہتا ہے یہ تو میں اپنے فن سے حاصل کیا, علم سے حاصل کیا, یہ تو میرے کو معلوم تھی نیات المعبود, میں جانتا تھا, میرا پروفیشن تھا یا اس وجہ سے میرا, جب تک نوکری نہیں مل رہی تھی اللہ میں نوکری دو نوکری دو نوکری دو کر رہا تھا, جب نوکری مل گئی تو بولتے نہیں میرا پروفیشن تھا نہ یہ میرے پاس اس کی ڈگری تھی اس لیے میرے کو ملی نوکری. ارے پہلے نہیں کیوں, پہلے کیوں نہیں ملی تھی, پھر ایسے ہی مل رہی تھی. یہ ایک آزمائش ہے, بل یہ فتنہ, یہ صورتحال جو ہوتی ہے نا کہ بندہ نعمت حاصل ہونے کے بعد کس کی طرف منسوب کرتا ہے, اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں یا ان اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں جن سے ہوتا ہوا نظر آیا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان اسباب کی طرف منسوب نہیں کرنا جن سے ہوتا ہوا نظر آیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرنا اس چیز کو. ولیکن اکثرہم لا یعلمون. رزق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ وہ سب کو برابر نہیں رکھیں گے, بعضوں کو بسط کریں گے, بعضوں پر رزق کو کھولیں گے اور بعضوں پر رزق کو تنگ رکھیں گے. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقدیری نظام ہے. اس میں پڑھے لکھے ہونا, بے پڑھے لکھے ہونا, قابل ہونا, غیر قابل ہونا, ہوشیار ہونا, غیر ہوشیار ہونا, یہ کوئی ایسی بات ضروری بات نہیں ہے. یہ بعض مرتبہ بہت بھولے بھالے بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں, بہت پیسے والے ہوتے ہیں اور بہت زیرک شاطر سمجھدار ہوتے ہیں, جا کے وہاں رہ جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کھولتے ہیں, جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں. اور یہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی کی چیز ہے. ایمان والوں کے لیے نشانی کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے نشانی یہ ہے کہ رزق کا تنگ کرنا اور کھولنا, اسباب رزق کا زیادہ حاصل ہو جانا, کم حاصل ہو جانا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے دونوں کے لیے. جس پر رزق زیادہ ملا اس کے لیے امتحان ہے کہ اس میں وہ کیا کرتا ہے, اللہ کے احکام اس میں پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا, شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور جس کو تنگی دی گئی उसमें उसका इम्तिहान है कि अल्लाह आया वो सब्र करता है कि नहीं करता, और वो दोनों मिलके चाहे नेमत के हों या मुसीबत के, वो किसकी तरफ मंसूब करते हैं हालात को। हालात जो है ना वो अल्लाह की तरफ मंसूब किए जाने वाली चीज़ है, तकलीफ जो है ना वो अपने तरफ मंसूब करने की चीज़ है, लेकिन अहवाल तकदीरी होते हैं अल्लाह तबारक व ताला। जैसे हमारे खालिक हैं अल्लाह पाक, हमारे असबाब के भी खालिक हैं, हमारे हालात के भी खालिक हैं, और ज़्यादातर हालात जो होते हैं वो अगर इंसानों की तरफ से हैं तो वो हमारे आमाल की वजह से ही होते हैं। आमालुकुम हुक्कामुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्काम हैं। हदीस में है कि तुम अपने हाकिमों को बुरा मत बोलो कि हमारे हाकिम ऐसे हैं, हमारे हाकिम ऐसे हैं, नहीं तो हमारे आमाल ही ऐसे हैं कि हमारे ऊपर ऐसों को फिर ला के बिठा दिया। लोग पुकारते रहते हैं कि इतने चोरों को फिर बिठा दिया सर पे, तो किसके सर पे बिठाया? चोरों के सर पे बैठा है, और किसके सर पे बैठा है? एक मजमून ये बयान फरमाया गया अल्लाह पाक की तरफ से कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। मायूसी नहीं है इस्लाम में, चाहे किसके किसी के कितने भी खराब हालात हों, परेशानियों के एतबार से, दुनिया की परेशानियों के एतबार से जब हालात हों तो भी मायूस नहीं होना, और आमाल के एतबार से भी मायूस नहीं होना। और जो लोग सुलूक में होते हैं, फिर मुरीदी की लाइन में होते हैं, उन लोगों को भी बहुत दिनों तक कुछ जब कुछ नतीजा हासिल होता हुआ नहीं दिखता कोशिशों का, जाहिर तौर पर तो मायूसी की कैफियत हो जाती है। बाद लोग अपनी बुरी आदतों में ऐसे फंसे हुए होते हैं कि बहुत कुछ उसमें से निकलने की कोशिश करने के बावजूद निकलते हुए नज़र नहीं आते, तो आदमी समझता है अब मैं नहीं सुधर सकता, मेरी इसलाह नहीं हो सकती, तो कहीं किसी लेवल पर भी जाकर मायूसी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो हर वक्त है खुली हुई, और उनकी रहमत जो है ना वो पूरे हालात, उनका एक कतरा, उनकी रहमत का एक कतरा पूरी दुनिया के इंसानों के हालात को बस है। इतने बड़ी रहमत वाले वो हैं, ये परेशानी नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही गुनहगारों को भी परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत वसी है, वह तौबा को कबूल फरमा लेते हैं, कितना ही कोई गुनहगार हो वो तौबा उसकी कबूल कर ली जाती है। ये आयत उस वक्त उतरी थी जब जो है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल वहशी जो है वो मुसलमान होने, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी, उनसे बोलो कि मुसलमान हो जाए। अजीब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिरस थी ईमान के मामले में, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम है। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे को कौन बख्शेगा, मैं तो कौन हूँ, मुझे अंदाजा है। तभी आयत नाजिल हुई थी अल्लाह ने फरमाया, आयतों में तो तरतीब है पहले, वअनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू, अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाओ और अपने परवरदिगार के वास्ते सरेंडर हो जाओ, अपने आप को अपनी गर्दन झुका दो, अपनी मर्जी जो है ना उसके ताबे कर दो, छोड़ दो अपनी मनमानी, वअस्लिमू लहू, उसके लिए अपने आप को हवाले कर दो, अल्लाह को हवाले कर दो, अपने को अपनी मनमानी छोड़ो, इससे पहले कि तुम्हारे पास अज़ाब आ जाए फिर तुम्हारी मदद न की जाए। और ये जो कुरान पाक हमने नाजिल किया है इसकी इत्तबा करो, इससे पहले कर लो कि अज़ाब आ जाए अचानक और तुम्हें पता भी ना हो। जब अचानक अज़ाब आएगा पता भी तुमको नहीं होगा, उस वक्त तुम कहोगे कि अब हम कुरान पाक पर अमल करेंगे, तो अब कहाँ टाइम है अमल करने। अल्लाह तबारक व तआला के हवाले हो जाओ, तुमको इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं तुम जब हमारे पास आओ तो कहने लगो हाय अफसोस मैंने अल्लाह ताला की जनाब में कैसी बेअदबी कर दी, मैंने अल्लाह ताला की जनाब में, अल्लाह ताला की बारगाह में मैंने कैसी ज्यादती कर दी, कैसी बेअदबी कर दी, और इस पर तुमको हसरत होगी, इस हसरत से पहले कर लो। अन तकूल नफ्स या हसरता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नफ्स कहने लगे हाय हसरत अला मा फरत फी जंबिल्लाह, उस बात पर जो मैंने अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में बेअदबी की, ज्यादती की। वइन कुंत लमिन साफिरीन औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तकीन, या यूं कहने लगो कि अगर अल्लाह ताला मुझे हिदायत देते तो मैं ज़रूर मुत्तकी होता, हिदायत देते तो मुत्तकी होता, कि हिदायत दे रहे हैं इस वजह से बोल रहे हैं मुत्तकी हो जाओ, हिदायत दी है इस वजह से कह रहे हैं कि मुत्तकी हो जाओ, अगर हिदायत ना देते तो तुमको मुकल्लफी क्यों करते, जिम्मेदारी क्यों लगाते तुमको, तुम्हें एक जिम्मेदारी लगाने का मतलब तुमको हिदायत दी है, उसके असबाब दिए हैं, उसके जब किसी शय के असबाब इंसान को दे दिए जाए तो उसकी हिदायत उसको दे दी गई। तो कहीं फिर आके ये कहने लगो, जब अल्लाह के पास पहुंचो तो ये कहने लगो कि अल्लाह ताला अगर आप मुझे हिदायत देते तो मैं मुत्तकी होता। औ तकूल हिन तरल अदाब लव अन्नली कर्रा, या अजाब को जब तुम देखने लगो तो ये कहने लगो कि काश मुझे वापस कर दिया जाए, मैं दोबारा दुनिया में जाऊंगा, फिर ऐसा नहीं करूंगा जैसे मैं कर रहा था। फाकून मिन मुहसिनीन, और वहाँ मैं नेक लोगों में से हो जाऊंगा। फला कद जात का आया थी, कहा यह जाएगा कि तुम्हारे पास हमारे अहकाम आए थे, एक चांस था जो तुमको दिया गया था। और ये दुनिया में आने के बाद आदमी जो कर रहा है ना, अगर आखिरत में जाने के बाद में दोबारा उसको दुनिया में भेजा जाएगा तो वही करेगा जो पहले करता था। बलौरुद्दु लादु लिमानुहु अन्हु, अगर इनको वापस किया जाएगा तो ये वही करेंगे जिनसे इनको रोका गया था। असल में एक मरतबा चांस इसलिए दिया जाता है कि वो एक मरतबा में ही आदमी की सलाहियत बाहर आ जाती है, आदमी के अंदर जो है ना वो एक मरतबा में आ जाता है, डबल डबल देखने की ज़रूरत नहीं है उसको, इसलिए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा फिर। अरे ज़िंदगी एक ही मरतबा क्यों दी है, दो तीन मरतबा रखना था, एक मरतबा वैसा एक मरतबा वैसा, नहीं वो एक मरतबा करने से जो अंदर है वो बाहर आ गया, किस्सा ख़त्म। भला कद्दात का आया थी कदब तब या वस्तक बरता, जब हमारे हकाम आते थे तो झुटला देते और तकब्बुर करते थे, हक बात को नहीं मानना, हक बात मालूम हो जाने के बावजूद नहीं मानना तकब्बुर है। इस बात को जहन में अच्छा रखो, तकब्बुर की हकीकतें दो चीज़ें हैं, बतरुल हक व गमतुन नास, अलकिब बतरुल हक व गमतुन नास, दो चीज़ें तकब्बुर की हकीकत में दाखिल हैं, एक लोगों को हकीर समझना और दूसरे हक मालूम होने के बावजूद उसको छोड़ देना। ऐसा है अल्लाह ताला को ये पसंद है, अल्लाह का ये हुक्म है, मसला ऐसा है बल्कि मालूम हो गया, उसके बावजूद किसी भी वजह से आदमी उसको छोड़ रहा है तो वो तकब्बुर है। कोई उजर पेश आ गया तो अलग बात है, उजर दरमियान में आ जाएगा, अगर उजर नहीं है तो तकब्बुर उसी का नाम है और किसका नाम है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे और पूरे आसमानों को समेट देंगे, लपेट देंगे। और दूसरी जगह पर अल्लाह ने बात को बयान फरमाया, जैसे तुम फाइल को लपेटते हो ना, खुले हुए फाइल को, खुले हुए पेपर को लपेट के गोली यानी उसका रूल बना लेते हो, तो रूल की तरह से हम आसमानों को लपेट के पकड़ लेंगे, जमीन को भी अपने कब्जे में ले लें, उनकी मुट्ठी में आ जाएगी। वल अर्दु कब्ज़तुहु वल अर्दु जमीयान कब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मतवियातुन बियमीनिही, सूर फूक दिया जाएगा और जितने आसमानों और ज़मीनों में ये सब बेहोश हो जाएंगे, इल्ला मंशाअल्लाह, कुछ मखलूक ऐसी होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नफखे सूर के वक़्त में बेहोशी से महफूज रखा जाएगा। एक रिवायत याद आई कि ईदुल फितर की रात, ईदुल फितर की जो रात लैलतुल जायज़ा जो है ना, ईदुल फितर की रात और ईदुल अज़हा की जो रात होती है, उन दोनों रातों में जो आदमी इबादत करते हुए वक्त गुजारता है वो नफखे सूर के वक़्त बेहोश नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर जो है ना उस वक़्त लोग अपने कामों में लग जाते हैं, रमज़ान पूरा रमज़ान था, कपड़े इस्तरी करके बैठे हुए हैं, लेकिन सुबह सुबह ईद की नमाज़ को जाना है, कपड़े इस्तरी करना है, कोई बाज़ार को जाके दीवान पे जो है ना सेवैयाँ ख़रीद रहा है, और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, औरतें जो है ना अपने सामान में लगे हुए हैं, मेहंदियाँ लगा रहे हैं, तो हर एक अपने अपने दुनियावी एतबार से मशगूलियत में खुशी मनाने में लग जाता है। ऐसे वक्त में जो बंदा अल्लाह की तरह मुतवज्जे रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उस दिन बेहोश होने से बचाएंगे जिस दिन सारे बेहोश होने वाले हैं। फसअका मन फिस समावाति व मन फिल अर्ध इल्ला मन शाअ अल्लाह, सिवाय इसके कि जिनको अल्लाह चाहेंगे बेहोशी से बचा देंगे, तो मनुफिक फीहि उखरा, फिर उसके बाद नफखे फिर सूर फूंका जाएगा, फैदा हम क़ियामु यंज़ुरून, वो सारे के सारे जो है ना वो खड़े हो जाएंगे और देख रहे होंगे। जब दूसरा सूर फूंका जाएगा, अल्लाह ताला इसराफ़ील अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि दूसरा सूर फूंको, पहला सूर सबको मार देने के लिए था, दूसरा सूर सबको जिंदा हो जाने के लिए, जैसे ही दूसरा सूर फूकेंगे सब अपनी अपनी ज़मीन से उठ जाएंगे और खड़े रह के परेशानी में देख रहे होंगे क्या है इधर उधर सीधी तरफ बाईं तरफ आगे पीछे क्या, तो भी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। मौजदीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस नकल फरमाई है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि जब नफ़े सानिया होगा, दूसरा सूर फूका जाएगा, तो सारे लोग ज़मीन से ऐसे उग जाएंगे जैसे जैसे बारिश होने के बाद में कोंपले उगती हैं, पौधे उगते हैं ना, बिल्कुल मुलतविया होते हैं, पीले 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 पीला, अब सब पौधे ज़मीन से जैसे निकलते हैं, वैसे लोग खड़े हो जाएंगे ज़मीन से निकल के और हैरानी में 1,000 साल खड़े रहेंगे।
बिल्कुल
1,000 साल तक लोग खड़े हुए रहेंगे अपने अपनी जगह पर, जैसे झाड़ है ना, 1,000 साल के, 500 साल के, 1,000 1,000 साल के झाड़ है खड़े हुए, तो इंसान खड़ा रहेगा ऐसे, क्योंकि वो 1,000 साल के बाद में तो उनको जमीन से छूटने का मौका मिलेगा, जमीन पकड़ी भी रहेगी उनकी जब तक। अजीब है वो हालात, आखिरत के हालात जो है ना, इस दुनिया के बाद जो हालात आने वाले हैं वो बहुत ही अजीब हैं, ना काबिले तसव्वुर है इस दुनिया में इंसान के वास्ते। इसलिए अम्बिया अलैहिस्सलाम जिनको उस उन हालात की सही खबर, उनको सही अंदाज़ा दिया जाता है, सही इल्म दिया जाता है, उनको ये दुनियावी हालात की बिल्कुल ही फिक्र इंसानों के बारे में नहीं होती थी इतनी जितनी आखिरत की होती थी, कि असल चीज़ वो है, वहाँ आदमी परेशानी से बच जाए। तो अल्लाह फरमाने कि जब नफ़ सानिया होगा तो फ़ैदा हम क़याम यंदुरून, वो अशरक़त अर्ध बिनूर रब्बिहा, और ज़मीन चमक जाएगी अपने परवरदिगार के नूर से, और आमाल नामा ला लिया जाएगा, आमाल और आमाल नामा किताब जो है ना, नाम आमाल जो है ना, वो ले आएंगे, दफ्तर के दफ्तर रख दिए जाएंगे हर एक के, जैसे हिसाब किताब होने वाला है तो सबके दफ्तर जमा करेंगे ना, सारों की फाइलें जमा कर दी जाएंगी, वजी अबिन नबी, और नबियों को लाया जाएगा, वह शुहदा और गवाहों को लाया जाएगा, उस पर गवाही देने वाले फरिश्ते गवाही देने वाले हैं, अमाल नामा गवाही देने वाले होंगे, अम्बिया अलैहिस्सलाम गवाही देने वाले होंगे, वो एक मंजर है क़ियामत का। अल्लाह ताला फरमाने कि ज़मीन चमक जाएगी अपने परवरदिगार के नूर से, और सारे लोगों के सहीफे और अमाल नामे तोलने के लिए ला दिए जाएंगे, और फिर सारे नबियों को बुलाया जाएगा, और फिर सारे गवाहों को बुलाया जाएगा, फिर लोगों के दरमियान में हक के मुताबिक फैसला कर दिया जाएगा। वफियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, हर नफ्स को उसका पूरा बदला दे दिया जाएगा जो उसने किया है, और अल्लाह तबारक व तआला खूब जानते हैं कि जो लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद में जो जहन्नम, जिनके लिए जहन्नम का फैसला होगा, वो क्या होगा उनके साथ, वो सब इकट्ठे किए जाएंगे, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, सारों की भीड़ जमा करके सबको फरिश्ते ढकल के ले जाएंगे, जानवरों को जैसे धकेल के ले जाते हैं ना रेवड़ को, जैसे जानवरों के रेवड़ को मसलक के लिए ले जाती लेके जाती हैं, तो वसीक अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, काफिरों को हंका के ले जाया जाएगा, ले जाया जाएगा चला के जो जहन्नम की तरफ, जमातों की शक्ल में, ज़ुमर की शक्ल में, यानी भीड़ की शक्ल में, ज़ुमर जुमा जमात को कहते हैं, हत्ता इदा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो आएंगे जहन्नम के पास तो दरवाजे इसके खोले जाएंगे, पहले से दरवाज़ा उसका खुला हुआ नहीं होगा बनता, दरवाजे खोले जाएंगे उसके, तो जहन्नम के जो ख़जाना है वो लोग बोलेंगे भाई ये कोई तुम्हारे आने की जगह थी, अंदाजा नहीं था तुम्हारे को क्या है यहाँ पे, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलून अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम में से रसूल नहीं आए थे जो तुमको अल्लाह पाक की आयतें पढ़ के सुनाते और डराते तुमको इस दिन के आने से, इस अंजाम से, देखो ये कोई काबिले बर्दाश्त है इंसान के लिए, कोई इंसान इसको बर्दाश्त कर सकता है, सब यहाँ यहाँ आने की क्या मुसीबत आ गई थी तुम्हारे, वो खजाना कहेंगे, खजाना कहते हैं जहन्नम के निगरानी करने वालों को, وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا, और डराते नहीं थे तुमको इस दिन की मुलाकात से, قالوا بلى, हाँ करते तो थे, ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين, बस काफिरों पर अजाब का फैसला जो है वो हो गया, अल्लाह ताला फरमाए, قيل ادخلوا ابواب جهنم, उनसे कहा जाएगा कि जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, अब इसमें हमेशा रहोगे, और जो तकब्बुर करने वाले हैं उनका यही ठिकाना है, अभी समझ कर मुतकब्बिर हैं, और लाया जाएगा उन लोगों को जो अपने परवरदिगार से डरते रहे जन्नत की तरफ, जुमारा जमात की शक्ल में, जो जन्नती होंगे उनको उनको भी इकट्ठा कर लिया जाएगा, जमा कर लिया जाएगा, और जो जमा के कोई 150 की नहीं रही हो, है कि वो लाखों करोड़ों में रहेंगी, एक एक जमात उधर की भी इधर की भी, तो जन्नत जन्नत की तरफ लाया जाएगा जन्नतियों को जमात की शक्ल में। यहाँ तक कि वो जब जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो वो इस हालत में होंगे कि जन्नत के दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे उनके इस्तकबाल के वास्ते, और उनकी तरफ से उसके जो ख़जाना है जन्नत के जो ख़जाना और मुहाफ़िज़ीन है वो कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती होती भी तुम खुश रहो तुम, वदखुलू खालिदीन, और हमेशा हमेशा के लिए तुम इसमें दाखिल हो जाओ। बस दुनिया में थोड़े दिन की बात है, तकवे वाली ज़िंदगी आदमी अख्तियार कर ले, अल्लाह तबारक व तआला अच्छे अंजाम से हम किनार फरमा देंगे। وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده, وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کیا, اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ تم تھوڑا سا تقویٰ پرہیزگاری اختیار کر لو, میں تمہارے ساتھ یہ کرنے والا ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ, اور یہ جنت کی جو زمین ہے آدم علیہ السلام کو جہاں سے نکالا گیا تھا اس کا پھر ہمیں وارث بنا دیا, اب ہم جہاں چاہیں یہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں, ادھر سے ادھر پھر سکتے ہیں, حیث نشاء جہاں ہم چاہ سکتے ہیں۔ فنعم اجر العاملین, عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے, جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ دائرہ بنائے ہوں گے عرش کے اطراف, اور وہ اللہ رب العزت کی تسبیح اس دن کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور لوگوں کے درمیان میں حق کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین, اور اعلان کر دیا جائے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے, کہ اس کی ہی لیے تعریف ہے کہ جو جنت کے مستحقوں کو جنت میں پہنچا دیا فضل فرما کر جنت کے کام کرنے والوں کو, اور جو جہنم کے مستحق تھے ان کو جہنم میں پہنچا دیا, یہ بھی اللہ کا ہی کام, چوروں کو ڈکیتوں کو اور خرابیوں کو بدکاروں کو جتنے مجرم ہوتے ہیں جو لوگ کرمنل جو ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں پہنچانا بھی تو کمال ہی ہوتا نا, کسی گورنمنٹ کی کمال کی چیز ہے وہ کہ جو غلطی والے کو پکڑنا۔ اس لیے دونوں کا فیصلہ ہونے کے بعد میں کہا جائے گا وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ رب العالمین۔